राधिका ने इशिका और उसके पति को सिंघानिया हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। इशिका को उसके पति के साथ नीचा दिखाने के लिए आयशा ने जानबूझकर नक्श को भी इनवाइट कर लिया था। हालांकि राधिका ने आयशा को पहले ही समझा दिया था कि वो नक्श को महंगे गिफ्ट लाने के लिए मना कर दे, फिर भी आयशा ने जानबूझकर नक्श को उकसाया ताकि वो महंगे गिफ्ट लेकर वहां पहुंचे। नक्श से बात करने के बाद आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। फिर उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो राधिका उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। आयशा ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करके कहा, मॉम मैंने नक्श को पहले ही कह दिया है कि कोई महंगे सामान लेकर ना आए, कहीं इशिका को ये ना लगे कि मैं उसके साथ कोई कंपटीशन करना चाहती हूँ। आयशा के बताने पर राधिका ने भी राहत की सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। जल्द ही वक्त बीत गया था और शाम के लगभग 5:30 बजने को आए थे। गेट खुलने के साथ ही गाड़ी की आवाज़ आई। आयशा इसे पहचान सकती थी, ये नक्श की स्पोर्ट्स कार की आवाज़ थी। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कहा, लगता है नक्श आ गया है, उसे टाइम की बहुत वैल्यू है इसलिए वो पहले ही आ गया। हाँ, एक सफल आदमी के लिए टाइम पैसों से ज़्यादा वैल्यूबल होता है, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा। आयशा राधिका और आदर्श के साथ नक्श का वेलकम करने के लिए बाहर की तरफ आई तो उन्होंने देखा कि वहां येलो कलर की एक काफी महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। गाड़ी में से नक्श बाहर निकला, उसने चॉकलेट ब्राउन कलर का महंगा सूट पहना हुआ था। नक्श जो गाड़ी लेकर आया था वो एक लिमिटेड एडिशन थी और उसके कपड़े भी काफी महंगे थे। फिर नक्श ने गाड़ी का बोनट खोला और उसमें से गिफ्ट निकलने लगा। उसकी मदद करने के लिए हाउस हेल्पर आ गया है। आयशा के मना करने के बावजूद नक्श कम से कम 15 बॉक्सेस गिफ्ट के लेकर आया था। उनमें से कुछ एक गिफ्ट ऊपर से खुले थे। आयशा ने देखा कि उसमें महंगी डायमंड ज्वेलरी तक थी, जिसे देखकर आयशा को एक पल के लिए जलन होने लगी। उन गिफ्ट्स को देखकर आयशा मन ही मन खुश हो रही थी तो वहीं राधिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। वो आयशा को कुछ कहती उससे पहले आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ये नक्श भी ना, सुनता ही नहीं है। मैंने उसे पहले ही कहा था कि नॉर्मल फैमिली डिनर है और उसमें इशिका का हस्बैंड भी आ रहा है, इसे इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। नक्श ने आयशा की बात सुन ली थी। वो उनके पास आया और काफी बेपरवाही से बोला, मुझे पता था तभी मैं काफी कम गिफ्ट लेकर आया हूँ, किसी और के चलते मैं अपने ससुराल की पहली विजिट खराब नहीं कर सकता। उसके बाद नक्श ने राधिका और आदर्श की तरफ देखकर पूछा, मॉम डैड आई होप आपको बुरा ना लगा हो। राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। राधिका के बाद आदर्श बोले, अगली बार आओ तो इसे अपना घर समझ कर आना, ससुराल समझ कर नहीं, और इतने गिफ्ट्स की सच में कोई जरूरत नहीं थी। नक्श ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, सभी गिफ्ट्स को अंदर रखवा दिया गया था। राधिका की नज़र अभी भी उन गिफ्ट्स के ऊपर थी। वो यही सोच रही थी कि जब इशिका और उसका हस्बैंड आएगा तो ये सब देखकर वो कितने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। राधिका उठकर अरेंजमेंट देखने के बहाने बाहर गई और फिर उसने श्रुति को अपने पास बुलाकर कहा, एक काम करो, कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाकर बाहर इशिका के आने पर उन्हें दे देना, मैं नहीं चाहती उनकी इंसल्ट हो। हालांकि गिफ्ट ज्यादा बड़े ना हो लेकिन कम भी नहीं होने चाहिए। राधिका को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने नक्श और आयशा के साथ इशिका और उसके हस्बैंड का डिनर अरेंज ही क्यों किया। राधिका के ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से आयशा भी लिविंग एरिया से उनके पास आ गई थी। राधिका की नजरों को आयशा समझ सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा, मॉम मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने सच में नक्श को कहा था कि वो इतने गिफ्ट लेकर ना आए। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी चैट हिस्ट्री देख सकती हैं, आप जानती हैं कि राजवंश फैमिली का कितना नाम है, अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से ही सब करेंगे। राधिका चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई, उसने गहरी सांस ली और फिर श्रुति से कहा, श्रुति ऐसा करो कि सभी हाउस हेल्पर और बाकी लोगों को बोल दो कि जब इशिका अपने पति के साथ आए तो कोई भी उसके साथ गलत व्यवहार ना करे और ना ही उन्हें ये जताने की कोशिश करे कि वो नक्श जितने अमीर नहीं है। राधिका ने उसके बाद तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इशिका को मैसेज भेजते हुए कहा, नक्श और आयशा भी यहीं पर हैं और काफी सारे गिफ्ट लेकर आए हैं, मैं तुम्हें पहले ही अवेयर करना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। गिफ्ट मायने नहीं रखते, लोगों की इंटेंशन मायने रखती है, बेफिक्र होकर घर आना। जी मिसेस सिंघानिया, हम एक घंटे में सिंघानिया मैंशन पहुंच जाएंगे, इशिका ने जवाब दिया। मैसेज भेजने के बाद इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा, उसने कोई अलग ड्रेस नहीं पहनी थी, हाँ हमेशा की तरह 3-पीस सूट पहना था जो नेवी ब्लू कलर का था। वहीं इशिका ने भी आयशा की तरह कोई खास मेहनत नहीं की थी, उसने लाइट ब्लू जीन्स के ऊपर ऑफ वाइट लूज क्रॉप टॉप पहना हुआ था। दोनों तैयार हो गए थे। गाड़ी में बैठने से पहले पृथ्वी ने सारे गिफ्ट्स को कार में रखा और फिर अभिमन्यु से बोला, मिस्टर राजवंश, मिस सिंघानिया, गाड़ी तैयार है, हम चल सकते हैं। इशिका और अभिमन्यु ने वसुधा की तरफ देखकर बाय किया, वो इस वक्त निवेदिता के साथ खड़ी थी। उन दोनों को साथ में देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा निवेदिता, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जब इन दोनों के बच्चे होंगे तो वो भी इन्हीं की तरह प्यारे होंगे, मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रही हूँ। वहीं जब इशिका के कानों में वसुधा की बात पड़ी तो इशिका ठोकर खाकर लगभग गिरने वाली ही थी कि अभिमन्यु ने उसे थाम लिया था। अभी तो उसने और अभिमन्यु ने थोड़ा ही आगे बढ़ना शुरू किया था और दादी उनके बच्चे तक पैदा करवाने लगी। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो ना, दादी कभी भी कुछ भी कह देती हैं। इशिका ने सिर हिलाया और खुद को संभाल लिया था। थोड़ी ही देर में वो अभिमन्यु के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। इशिका के दिमाग में अभी भी राधिका के मैसेज में लिखी बातें चल रही थी। उसने कभी आयशा से कॉम्पिटिशन करने का नहीं सोचा था और ना ही उसने ये देखा कि अभिमन्यु ने गिफ्ट में क्या मंगवाया है। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीरे से कहा, मिसेस सिंघानिया किसी के भी बैकग्राउंड के हिसाब से उसे जज नहीं करती और ना ही उस हिसाब से बिहेव करती है, लेकिन बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है आज उनमें से कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके इंसल्ट करने पर उनका जवाब उनके हिसाब से दूंगा? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दिया। अभिमन्यु ने आगे कहा, चिंता मत करो, मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है कि मैं अपने से बड़ों की इंसल्ट करूं। इनफैक्ट मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। क्या सच में? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यहां किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि हम दोनों की शादी हुई है। उसे ये लगता था कि मैं उसे परेशान कर रही हूं, यहां तक कि उसने कई बार मुझे सिक्योरिटी गार्ड से बाहर तक निकलवा दिया था। इशिका अभिमन्यु को परेशान कर रही थी। वो मुझे पता नहीं उस वक्त कैसे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर गया, वरना मैं ऐसा नहीं हूं, अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा भी गुस्सा आने पर एम्प्लॉयज को कम से कौन निकालता है? इशिका ने अभिमन्यु को परेशान करते हुए कहा। अभिमन्यु जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगा तो इशिका ने हल्का हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी।
पृथ्वी भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने जवाब में कहा, आप मिस्टर राजवंश को ब्लेम नहीं कर सकती हैं मिस सिंघानिया, आप लोगों की शादी वाकई काफी अजीब तरीके से हुई है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। मिस्टर राजवंश को याद नहीं था कि वो आपके साथ शादी करने के लिए कब गए थे। अभी भी नहीं समझ आ रहा आखिर आप दोनों की शादी कैसे हुई। ऊपर से आप हमारे सामने अलग अलग जॉब के जरिए आ रही थीं। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, क्योंकि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैंने सिंघानिया मैंशन छोड़ दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब की थी, लेकिन उस वक्त आप नाबालिग थीं, फिर आपको काम कैसे मिल सकता है? पृथ्वी ने हल्का चौंकते हुए पूछा। हाँ, जानती हूँ, मुझे कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली थी और ज़्यादातर ऐसे ही काम मिलते थे जहाँ पढ़ाई लिखाई या उम्र मायने नहीं रखती थी, बस भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता था, इशिका ने जवाब दिया। पृथ्वी और अभिमन्यु को सब बताते हुए इशिका पुरानी यादों में खो गई। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सच कहूं तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी अच्छी लगती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर बार बार इस बात का ब्लेम नहीं लगाया जाता था कि मैं किसी की नाजायज बेटी हूँ। मालविका मेरे पास नहीं रहती थी, आयशा खुद को बेहतर दिखने के चक्कर में मुझे नीचा गिराने की कोशिश नहीं करती थी। मैं अकेली थी, गरीब थी, पर हाँ, इंडिपेंडेंट थी और खुश भी। फिर तो मानना पड़ेगा कि आपने अपने जीवन में काफी मुश्किल टाइम देखा है मिस सिंघानिया, पृथ्वी ने जवाब दिया। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं था, इशिका ने काफी हल्के अंदाज में कहा। भले ही इशिका कितना भी छुपाए, लेकिन ये सच था कि उसने बहुत मेहनत की थी। शुरुआत में उसने बहुत सारी नौकरी की, स्टडी को पूरा टाइम दिया, डॉक्टर मर्चेंट बनी और अपनी एक दो कंपनी खोली जिनका ध्यान अब दिशांक रख रहा था। सोचते हुए इशिका गाड़ी के बाहर देख रही थी। मौसम काफी ठंडा हो रहा था और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अचानक बारिश तेज हो गई और वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर इशिका को याद आ गया कि उसने एक वक्त में कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें भी उठाई थीं। अचानक इशिका की नज़र वहां एक आदमी पर गई जिसने पीले रंग की सेफ्टी कैप पहनी हुई थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े गंदे और कीचड़ में सन गए थे। वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था और छाता नहीं होने की वजह से उसने अपने हाथों से सर को ढक रखा था। इशिका को अपना वक्त याद आ गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इशिका ने अचानक पृथ्वी से कहा, क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक सकते हैं? पृथ्वी ने कुछ भी करने से पहले अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने इशारे से इशिका की बात मानने को कहा। गाड़ी रुकने पर इशिका ने फिर अपने सामान में से एक छाता उठाया और भागकर उस आदमी के पास गई। उसने उस आदमी को छाता दे दिया था। वो आदमी मुस्कुराते हुए हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था और उसे कुछ पल रुककर उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इशिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वापस से आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मोड़ से थोड़ी आगे गई, अचानक सड़क के किनारे एक और लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से काला सूट पहने दो बॉडीगार्ड बाहर निकले और उनके हाथ में एक बड़ी सी छतरी थी। वो उस गंदे से मजदूर के पास गए और बोले, आई एम रियली सॉरी सर, हम ट्रैफिक में फंस गए थे और आने में देर हो गई। आज आप कंस्ट्रक्शन साइट पर चेक करने के लिए आए थे और आज ही इतनी तेज बारिश हो गई। इशिका नहीं जानती थी कि उसने थोड़ी देर पहले जिसकी मदद की थी वो कोई मामूली मजदूर नहीं बल्कि एक अमीर आदमी था। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। वो अपनी गाड़ी में आया और अंदर जाकर बैठ गया था। फिर उसने अपने गार्ड से कहा, अभी अभी यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक ब्लैक लग्जरियस गाड़ी गई है, उसका पीछा करो और पता लगाओ कि उसमें कौन था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में राधिका अभी भी इशिका और उसके पति के आने की तैयारी में जुटी हुई थी। उसे इतनी मेहनत करता देखकर आदर्श ने बौहें उठाकर कहा, राधिका तुम थक गई हो और इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन सा कहीं का प्राइम मिनिस्टर नहीं है,
वैसे भी ऐसे लोगों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें किसी का बैकग्राउंड देखकर उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, राधिका ने जवाब दिया। वो लोग बातें कर रहे थे तभी एक गाड़ी सिंघानिया मैंशन के अंदर एंटर हुई। उन्होंने देखा उस गाड़ी से इशिका निकली थी। इशिका, तुम आ गई, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, और तुम्हारा पति, वो कहाँ है? इस बीच वो सभी लोग बाहर आए और हैरान रह गए, क्योंकि बाहर किसी और की नहीं बल्कि अभिमन्यु की गाड़ी खड़ी थी। उन सबको यही पता था कि इशिका अपने पति के साथ डिनर के लिए आने वाली है। वहां इशिका का अभिमन्यु के साथ आना कुछ और ही इशारा कर रहा था।